नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं आज बीजेपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन पार्टी ने बिना किसी को चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ा था। आज शाम 4 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंचेंगे और वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा समेत कई दावेदार हैं। आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगी। 2019 में इसके खिलाफ कुल 18 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर 16 दिन सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत सहित 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। पार्टी ने सत्तारूढ़ NDA और विपक्षी गुट इंडिया से पूर्ण दूरी बनाए रखते हुए अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बसपा की शाहजहांपुर जिला इकाई के प्रमुख उदयवीर सिंह ने संवाददाताओं से कहा, मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है। सिंह ने कहा कि आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में जहां भी पार्टी संगठन कमजोर है उसे मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि रविवार को बसपा के आधिकारिक बयान में आनंद की नियुक्ति पर कोई जिक्र नहीं किया गया। सिंह ने कहा कि मायावती ने लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक के दौरान इस फैसले की घोषणा की थी। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के कुछ दिनों के बाद उनके पिता M.K. विश्वनाथन का शनिवार 9 दिसंबर को निधन हो गया। M.K. विश्वनाथन ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई में काफी संघर्ष किया था। सौम्या के हत्यारों को 25 नवंबर को दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सौम्या के 82 वर्षीय पिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो सजा सुनाए जाने की कार्यवाही को अस्पताल से ऑनलाइन देख रहे थे। दरअसल सौम्या की 2008 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो ऑफिस से घर लौट रही थीं। उनकी लाश कार में मिली थी। वो हेडलाइंस टुडे समाचार चैनल की पत्रकार थीं। पहले लगा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, मगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि उनके सिर में गोली मारी गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 318 करोड़ से ज्यादा बरामद कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि अभी भी नोटों की गिनती जारी है और एक सही आंकड़ा सामने नहीं आ सका है। इस मामले को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का धीरज साहू के पैसों से किसी तरह का लेना देना नहीं है और उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए जनता को भ्रष्टाचार की गारंटी देने का आरोप लगाया। राजस्थान में कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की मदद के लिए 2 महीने पहले स्थापित हेल्प डेस्क को 373 शिकायतें मिली हैं और अवसाद से ग्रसित छात्रों को पेशेवर परामर्श एवं चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराई गई है, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोटा के कोचिंग संस्थानों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों द्वारा कथित रूप से आत्महत्या किए जाने की घटनाओं में वृद्धि के बाद कोटा प्रशासन ने सितंबर में कई कदम उठाए थे। अधिकारियों ने बताया कि तनाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बीच कोचिंग संस्थानों में छात्रों को लगभग एक महीने के लिए नियमित परीक्षाओं से छूट दी गई और प्रसिद्ध प्रेरक वक्ताओं ने छात्रों के साथ कई सत्र आयोजित किए। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और लोहा इस्पात सीमेंट तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए वित्त जैसे मामले अब भी चुनौती बने हुए हैं। यादव ने यहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सन 2019 में निम्न कार्बन वाले उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल लीड आईटी अर्थात उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व की शुरुआत के बाद से वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्त जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। यादव ने चुनौतियों विशेषकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बौद्धिक संपदा के अधिकार जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र पर जोर दिया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।